जो वाणी चल रही थी 10-8-65 की तीसरे पेज के मध्य आदि बात चल रही थी, हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं और यहाँ पार्ट बजाने आती हैं।
Discourse that was in progress was of 10-8-65 at the beginning of middle of page 3. It was being discussed that we souls reside in incorporeal world and come here to play our roles.
इस समय तुम बच्चों को सारी नाली कैसे नंबरवार हर एक धर्म वाले अपने अपने पार्ट अनुसार आते हैं, इसको अविनाशी ड्रामा कहा जाता है।
At present, you children have the entire knowledge. How souls of every religion come down rank-wise as per their predestined roles. This is called the imperishable drama.
और ये बात किसी की बुद्धि में नहीं है सिवाय तुम्हारे। हम बेहद ड्रामा के एक्टर्स हैं ना? बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को व अपने जन्मों को जानते हैं।
And this matter is not in anyone's intellect barring you. We are the actors of the Behat, that is unlimited drama. Is it not? We know the unlimited history, geography and our own births.
तुम बच्चे समझा भी सकते हो। बाप तुम बच्चों को कितना रिफ्रेश करते हैं। इसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है रिफ्रेश करने में।
You children can even explain. Bap, that is father, refreshes you so much. Even in this, it is according to the purushat, that is individual efforts in refreshing.
कोई को तो बड़ी खुशी रहती है। बाबा हमको सत्य ज्ञान सुनाते हैं और कोई भी दुनिया का मनुष्य सत्य ज्ञान दे नहीं सकता।
Some remain very blissful. Baba teaches us true gyan, that is knowledge, and no other man in this world can give this true gyan.
जानते ही नहीं, इसलिए इसको अज्ञान अंधेरी कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हम अज्ञान अंधेरे से कैसे आए हैं, फिर ज्ञान के सोजरे में कैसे जाते हैं, ये भी नंबर वार समझा सकते।
They do not know at all. That is why it is called the darkness of ignorance. Now you know how we have come out of this darkness of ignorance, and again how we go into the daylight of knowledge. This also can be explained rank-wisely.
घोर अंधेरा और घोर सोझरा किसको कहा जाता है? ये अक्षर बेहद सही लगते हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात।
What is known as dark darkness or broad daylight, these words actually refer to the unlimited. Day of Brahma and night of Brahma.
दिन होता है तो घोर सोझरा भी होता है। ब्रह्मा की रात होती है तो घोर अंधेरा भी होता है। आधा कल्प सोझरा और आधा कल्प अंधेरा।
When it is day, it is also extremely bright. When it is night of Brahma, it is also absolutely dark. Half kalp, that is epoch, is light, and half kalp is darkness.
रात और दिन, सांझ और सवेरा, ये सब बेहद की बातें हैं। हद का सांझ सवेरा नहीं है। बाप तो बेहद की बातें सुनाते।
नाइट एंड डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग, ऑल दीज आर एन अनलिमिटेड पैरेलल्स। इट डज नॉट रिफर टू द इवनिंग एंड मॉर्निंग ऑफ दिस वर्ल्ड। फादर टेल्स अनलिमिटेड वर्ड्स।
तुम बच्चों की बुद्धि में है बेहद की बातें, क्योंकि बाप आकर के बेहद का ज्ञान देते हैं और सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं।
these unlimited words remain in you children's intellect, because Father comes and gives unlimited knowledge and explains the essence of all religious scriptures.
ऐसे नहीं कि भारत के ही शास्त्रों का सार समझाते, बाइबल और कुरान का भी सार समझाते। आगे चल के जब बड़े बड़े धर्म पिताएं निकलेंगे तो ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर वो अपने ही ग्रंथों की टीका टिप्पणी ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार करने लग पड़े।
It is not as though he explains the scriptures of Bharat only. He explains the essence of Bible and Quran also. Later on, when famous religious prophets will emerge, they will comment and summarize their own granth, that is holy text, based on this Ishwariya knowledge.
ये जो भी शास्त्र पढ़ते हैं, दान पुण्य आदि कुछ भी करते रहते हैं, इनमें तो अल्पकाल का सुख मिलता है। पाप कहते हैं इनसे मैं नहीं मिलता हूँ। जो मैं इन्हों को विश्व का मालिक बनाऊं, इन बातों से मैं मिलता नहीं।
Reading of scriptures and acts of charity and pious deeds performed by anyone will yield only temporary joy. Father says, I do not meet by these actions to make them the masters of the world. I do not meet based on these deeds.
ये भी समझते हो, सभी तो विश्व का मालिक नहीं बन सकते। विश्व का मालिक बना तो नंबर वार पुरुषार्थ सारे ही पावेंगे, और मालिक तो सिर्फ वो बनेंगे जिनको बाप पढ़ाते।
You understand this, that everyone cannot become the sovereigns of world. The world sovereignty can be got only based on the efforts rank-wise. Only those become sovereigns who are taught by the Father.
पढ़ने वालों में भी आपस में एक दूसरे से पढ़ाई पढ़ने लग पड़ते, उनको भी मालिकाना नहीं मिलेगा विश्व का। किनको मिलेगा? जो सिर्फ बाप, एक बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं।
What? Even amongst those who study, they begin learning from one another. They will also not acquire the sovereignty of the world. Who will receive? Those who study from Father, that is, from only one Father.
जिन्होंने कल पहले पद पाया है वो ही राजयोग सीखते हैं। सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखती है। कोटों में कोई पढ़ते हैं, इतने करोड़ है, 500 करोड़ है दुनिया में, और बाप की पढ़ाई पढ़ने वाले कोटों में से कोई, और कोई में से भी कोई निकलते।
दोस्त who had received the posts in last epoch, they alone learn Rajyog. The entire world does not learn Rajyog. Only few in a crore, that is 10 million study. How many people are there? There are 5 billion people in the world. Those who study from only one father are a few out of few among the crores.
इतना राजयोग सीखते सीखते, इतने वर्ष पढ़ते हुए फिर भी ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते। बाप कहते हैं माया कितनी प्रबल है।
इवन आफ्टर लर्निंग सो मच ऑफ राजयोग, स्टडीइंग फॉर सो मेनी इयर्स, दे गिव अप सच अ स्टडी। बाप सेज माया इज वेरी पावरफुल,
बिल्कुल ही बेसमझ बनाई देती है। ऐसा बाप जो स्वर्ग का भरसा देते हैं उनको भी छोड़ देते हैं, हार दे देते। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसा होता आया है, जिसके लिए अक्षर है आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदैनं, गीता में प्रसिद्ध श्लोक है।
इट मेक्स वन टोटली इग्नोरेंट, दे फोरसेक सच अ फादर who bestows on them the sovereignty of Swarg, that is heaven. They divorce him. Father says that this has been happening in every Kalpa. for which these words are said.
Acharyavat pachyati kachidenam.
In Gita, it is a famous slok.
Koi kis roop mein dekhta hai usko, koi kis roop mein dekhta hai. Baap kehte hai acharyavat. Baap ka bananti, sunanti aur bhaganti ho jati.
Each one sees him, that is God, from his own aspect. Pap says that people become his, that is of the father, listen to him and even run away from him in wonder.
Samajhte hain barobar hum swarg ke malik bante hain phir bhi bhargati de dete hain. Pap jante hain inka desh nahi hai. Kya jo bhargati de dete hain pap ko pehchan kar inka apna koi desh पक्का देश नहीं है कन्वर्ट होने वाले हैं.
They do understand that they will certainly become sovereigns of swarg, that is heaven, but still they divorce him. Father knows that they do not have a country. What? Father knows that they who divorce him, having once recognized him, do not have any particular country of their own. They are those who get converted.
ये माया है जो इनको तूफान में लाती रहती है. ऐसी सजनियां जिनको श्रृंगार करके स्वर्ग की महारानी बनाता हूं वो भी छोड़ देते हैं.
इट इज माया दैट ड्रैग्स देम इनटू द स्टॉर्म. इवन दोज बिलोवेड वंस हुम आई डेकोरेट एंड मेक देम डॉटेड क्वींस ऑफ हेवन दे टू लीव मी.
क्या स्वर्ग में कितनी महारानियां होंगी है? अरे स्वर्ग में, स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है ना, वहां कितनी महारानियां होंगी? आठ महारानियां होंगी, आठ महाराजा होंगी.
व्हाट, हाउ मेनी क्वींस विल रिसाइड इन हेवन? सतयुग इज कॉल्ड हेवन, इजंट इट? हाउ मेनी क्वींस विल बी देयर? एट क्वींस एंड एट किंग्स विल बी देयर.
तो जो आठ महारानियां बनने वाली है, महारानियों का पद पाने वाली है, वो परमात्मा बाप को पहचानती तो होंगी ना? पहचानती है और पहचानने के बाद भी फिर छोड़ देती.
सो दोज एट हु आर गोइंग टू बिकम द क्वींस, गोइंग टू एक्वायर द स्टेटस ऑफ अ क्वीन, दे विल इंडीड रिकॉग्नाइज द परमात्मा बाप, इज इट नॉट? दे डू रिकॉग्नाइज. And even after recognizing, they leave Bab.
Nahi. Satyug ke aathve Narayan ke saath jo Maharani hogi, wo dusre janam mein convert nahi hogi. To jab convert hogi, to chhodegi nahi. Sachche raaste ko nahi chhodegi. Chhodegi. Shooting kahan hogi? Shooting to yahi hogi na.
Some said no. No. The queen of 8th Narayan of Satyug, will she not get converted into other religion? So when she converts, will she not leave? Will she not leave the righteous path? She will leave. Where will the shooting occur? The shooting will occur here itself. Is it not?
Bula. Jinko Maharani banate hai, wo bhi chhod dete hai. बाप फिर भी कहते हैं जिससे सगाई होती है उन्हीं ही को याद करना चाहिए.
सो इट वॉज सेड दैट दोज हुम आई मेक क्वींस दे विल ऑल्सो लीव. बाप सेज अगेन दैट वन शुड रिमेम्बर ओनली दैट वन हुम वन इज एंगेज्ड टू.
याद कोई फट से नहीं ठहरेगी. क्या याद की प्रैक्टिस करनी पड़ती है. भक्ति मार्ग में भी गायन अभ्यास वैराग्य ग्रहियते, अभ्यास करने से ही आत्मा एकाग्र होगी.
रिमेम्बरेंस विल नॉट स्टे एट वंस बट द आर्ट ऑफ याद दैट इज रिमेम्बरेंस शुड बी प्रैक्टिस. देयर इज अ फ्रेज इन डिवोशनल पाथ टू
अभ्यास वैराग्य ग्रहियते.
Which means, by practice alone and by renunciation, O son of Kunti, the mind will be controlled. By practice alone, the soul will achieve concentration.
Adha kalpanam rup me phase ho. Tresat janm, bhanti bhanti ke naam aur rup me buddhi phasi hai. To practice to phasne ki pad gayi na.
You got entangled in name and form for half a kalpa. For 63 births, the intellect has remained entrapped in different names and forms. So it has become a habit to get entrapped, is it not?
Abhi apan ko atma samajh baap ko yaad kare, ye bada mushkil. Sach mein tum atma abhimani bante ho. Parantu vahan paramatma ko nahi jante ho.
Now, to consider oneself as a soul and to remember the Father, this has become very difficult. You become soul conscious in Satyug, but you do not know the Supreme Soul there.
Aur yahan? Yahan tum ghadi ghadi atma abhimani bante ho, ghadi ghadi deh abhimani ban padte ho, lekin yahan tum baap ko jante bhi ho.
And here? Here you become soul conscious in a moment and body conscious the next moment. But here you know the Father also.
Paramatma baap ko sirf ek baar hi janna hota hai. Yahan tum aadha kalp deh abhimani ban jate ho. Ye bhi nahi samajhte ho hum aatmaon ko ye sharir chhod karke phir dusra paath lekar ke bajana hai.
The Supreme Soul Bab is to be understood only once. Here, you remain body conscious for half a kalpa. Even this you do not understand that we souls have to leave the one corporeal body and enter another one to play our roles.
Jab dusra paath bajana hi hai, to rone ki to darkari nahi. Jab ki baap dwara tum sukhdham ka varsha pa rahe ho, तो कितना खुशी होनी चाहिए.
When another role has to be played, there is no need to cry at all. When you are obtaining the inheritance of Sukhdham, that is abode of bliss, from the Father, then how happy should you feel?
10-8-65 की वाणी का चौथा पेज. तो हम क्यों नहीं इन बातों पर अटेंशन देवे और अटेंशन दे करके स्कॉलरशिप लेवे. बल बच्चे कब अपने से प्रतिज्ञा भी करते कि हम बाप को कब नहीं भूलेंगे, फिर भी माया भुलाई देती.
Fourth page of Vani, dated 10-8-65. Why don't we pay attention to these words? And paying due attention, why don't we receive the scholarship? Though we make instant pledge with Bap that we will never forget him, but Maya makes us forget.
माया बड़ा जोर से तूफान लगाती है. कितना जितना जितना हमें स्त्रीय रहना चाहते हैं, परंतु माया होने नहीं देती. युद्ध का मैदान है ना. एक तरफ है प्रबल माया और दूसरी तरफ है प्रबल बाबा.
माया क्रिएट्स वेरी पावरफुल स्टॉर्म्स. हाउएवर मच वी ट्राई टू रिमेन स्टेबल, but Maya does not allow it to happen. It is a battlefield, is it not? On one side is the powerful Maya, and on the other side is the powerful Baba.
Maya bhi utni shaktivan banti hai jitna Baba shaktivan. To abhi ki yuddh ki baatein shastron mein likhi hui hai. Kya? Chahe Ramayan ho, चाहे महाभारत हो, चाहे देवासुर संग्राम हो.
माया ऑल्सो बिकम्स एज पावरफुल एज बाबा. सो द वर्ड्स अबाउट द प्रेजेंट बैटल आर रिटन इन स्क्रिप्चर्स. व्हाट वेदर इट इज रामायण और महाभारत और द देवासुर संग्राम, दैट इज अ बैटल बिटवीन देवता, दैट इज डेटीज, एंड असुर, दैट इज डेमन्स.
शास्त्रों में जितनी भी बाहुबल की युद्ध की बातें लिखी हुई है देवताओं असुरों के बीच में, वो कहाँ की यादगार है? अभी संगम युद्ध की.
Whatever has been written in scriptures about the battles of physical might between the deities and the demons, where is it a memorial of? It is a memorial of present Sangam Yuga, that is, confluence age.
नहीं तो वास्तव में देवता कोई लड़ाई नहीं लड़ते। देवताओं को लड़ाई लड़ने की क्या दरकार? वो तो सुख में जीवन जीते हैं।
Otherwise, in reality, devatas, that is deities, do not fight battles. Where is the need for deities to fight? They lead a life of supreme bliss.
ये आसुरी दुनिया है। इसे ये द्वैतवादी दुनिया में लड़ाई झगड़े होते देवताएं तो होते हैं अद्वैत जहां अद्वैत होता है वहां लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं होती है
दिस इज द वर्ल्ड ऑफ डेमन्स क्वारल्स एंड फाइट्स टेक प्लेस इन दिस वर्ल्ड ऑफ द्वैता दैट इज ड्यूअलिटी देवतास आर अद्वैता दैट इज नॉन ड्यूअल There is no mention of any quarrel or fight in non-dual world.
तो यहाँ माया बड़ी प्रबल है अभी की युद्ध की बात है तो तुम पांच विकारों पर जीत पहनते एक ही बाप को याद करने से पांच विकारों पर जीत पहनने में बल मिलेगा
But here, Maya is very powerful. It is about the battles now, so you win over the Panch Vikar, that is, the five vices. If we remember only one Bab steadfastly, we will get the power to acquire triumph over the five vices.
अगर और औरों को याद किया, बिविचारी याद की, तो बाप की जो शक्ति है, वो अब बिविचारी शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती.
If we remember many others, if our remembrance is adulterated, then we will not acquire the chaste power from Bab.
क्योंकि हमको तो इस दुनिया को छोड़ करके बाप से परम धाम जाना है क्या बोला है गीता में जो मनुष्यों ने गीता लिखी उसमें भी लिखा हुआ है कहाँ जाना है
Because we have to return to the Paramdham, that is soul world, leaving this world. What does Gita say in this context? It is also written in Gita that was subsequently written by human beings. Where should we return?
Na tat bhasayate suryo na shashanko na pavaka. Jahan chandrama ka, surya ka, अग्नि का प्रकाश नहीं पहुंच सकता वहां जाना न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक
वेयर द रेस ऑफ द मून द सन एंड अग्नि दैट इज फायर कैनॉट रीच वी हैव टू गो देयर
यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम जहां जाकर के मनुष्यात्मा इस मृत्युलोक में वापस नहीं आती इस दुख की दुनिया में वापस नहीं आती वह मेरा परम धाम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम
आफ्टर गोइंग वेयर द ह्यूमन सोल्स डू नॉट रिटर्न टू दिस मॉर्टल वर्ल्ड डू नॉट रिटर्न टू दिस सोरोफुल वर्ल्ड दैट इज माई सुप्रीम अबोर्ड
वहां जाने के बाद ऐसे नहीं कि ये सृष्टि रहती नहीं है सृष्टि तो रहती है लेकिन आत्मा सुख की सृष्टि में वापस आती है बाप के घर से कोई भी बच्चा जो भी लौटेगा परम धाम से इस सृष्टि पर आकर के दुख नहीं हो सकता
आफ्टर द सोल्स गो देयर इट डज नॉट मीन दैट दिस वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट दिस क्रिएशन डज एग्जिस्ट But the souls come down into the heaven, blissful world. Whichever child and whosoever will come down from Paramdham, that is, Father's abode, cannot experience sorrow in this world.
पहले सुखी जीवन, और बाद में धीरे धीरे संघ के रंग में आने से दुखी जीवन हो जाता है। तो हमको तो परमधाम वापस जाना है, इस पुराने शरीर को छोड़ देना
The first birth will be a happy life, and later on, due to gradually getting tainted by the company, it leads a sorrowful life. In fact, we have to return to the Paramdham. We have to give up this old corporeal body.
क्या खुदकशी करनी है? खुदकशी नहीं करनी है। ऐसी आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। ऐसा पक्का अभ्यास करना है, मैं आत्मा स्टार ज्योति बिंदु स्वरूप प्रकृति के बीच में चमकता हुआ ऐसा सितारा हूँ, देह नहीं हूँ। इस बात का ऐसा पक्का अभ्यास करना है कि शरीर अलग मालूम पड़े और आत्मा अलग दिखाई पड़े।
Give up? Does it mean we have to commit suicide? We must not commit suicide. Should remain in such a steady soul conscious state. Should perform such a pakka, that is strong practice. I am a soul in the form of a shining point of light situated between the eyebrows. I am such a shining sitara, that is star. I am not this body. We should practice this thought so strongly that we should feel practically that body is different, soul is different.
बिंदु बिंदु आत्माओं की रोशनी इन आंखों से निकलती है। जिस आत्मा की यादगार में मस्तक में भ्रकुटी के बीच में टीका लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं।
We are atmas, that is souls, points of light. The light of the point soul emerges from these eyes. In remembrance of this atma, we apply Tilak, that is vermilion, between the eyebrows on our foreheads. We apply bindi.
लेकिन लगाने वाले ये भूल चुके हैं कि हम एक स्टार आत्मा हैं। सिर्फ ऐसे दिखावटी टीका या बिंदी लगा रहे हैं।
But those who apply have forgotten that they are star-like souls. They are just wearing it for show off.
ऋषियों महर्षियों ने जब ये परंपरा बनाई थी तो इसलिए बनाई थी कि एक दूसरे को देख करके आत्मिक स्थिति बनी रहे।
When the rishis, that is sages and saints, had introduced this tradition, they did it so that the soul conscious stage should prevail when they see one another.
ये मिट्टी की देह याद आए, क्योंकि बुद्धि जिसको याद करती है वैसी ही बुद्धि बन जाती है।
दिस बॉडी मेड ऑफ सॉइल मस्ट नॉट बी रिमेम्बर्ड बिकॉज वॉट एवर द इंटेलेक्ट रिमेम्बर्स इट बिकम्स लाइक दैट।
चोर डकैतों के साथ रहने वालों की बुद्धि चोर डकैतों जैसी बन जाती। आत्मिक स्थिति में रहने वालों के साथ जो रहेंगे ऐसा संग करेंगे तो उनकी आत्मिक स्थिति बनेगी।
The intellect of those residing amidst thieves and dacoits will behave like them. Those who will reside amongst the ones that are soul conscious or will do their company, then they will attain soul consciousness.
हम आत्मा जैसे ज्योति बिंदु है, वैसे बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा शिव भी ज्योति बिंदु है। वो ज्योति बिंदु जन्म मरण के चक्र से न्यारा है।
जस्ट लाइक वी सोल्स आर शाइनिंग पॉइंट्स ऑफ लाइट सिमिलरली द फादर ऑफ अस सोल्स हु आर पॉइंट्स ऑफ लाइट दैट इज परमपिता परमात्मा शिव इज ऑल्सो ए शाइनिंग पॉइंट ऑफ लाइट दैट ज्योति बिंदु दैट इज द शाइनिंग पॉइंट ऑफ लाइट इज बियॉन्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ।
जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, सदा शिव है, सदैव परम धाम का रहने वाला है, ऊंची स्टेज का रहने वाला है, उसके लिए गायन है ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम।
He does not enter the cycle of birth and death. He is Sadashiv, ever beneficial, permanent resident of Paramdham, that is, the supreme abode, resident of the highest stage. Highest is your name, loftiest is your mission, and highest is your abode, are the words in his praise.
वो सब पाप की शक्ति में व्यापक नहीं है, जैसे गीता का वचन है, सद्धाम परम मम, मैं उस परम धाम का रहने वाला हूँ। तो जो परम धाम का रहने वाला स्वयं ही बता रहा है, वो इस दुनिया में व्यापक कैसे हो गया?
He is not pervasive in this sinful world, as it is stated in Gita.
Sadham paramam mama
means that supreme abode is mine. I am the permanent resident of that supreme abode. When the permanent resident of Paramdham himself is saying so, how can he be pervasive in this world?
ये मनुष्यों का ज्ञान है। चारों ओर परमात्मा को ढूंढना कहीं नहीं मिला, तो सिर्फ वो हम कह के बैठे। जहाँ देखो वहाँ परमात्मा ही परमात्मा, कण कण में भगवान। मुसलमान लोग भी कहने लगे जर्रे जर्रे में भगवान है।
This is the ज्ञान, that is knowledge of the manushya, that is humans, searched Paramatma in all the four directions, but did not find him anywhere. Then started saying Shivoham, that is, I am Shiv. Wherever you see Paramatma alone. There is Bhagwan, God, in each and every particle. Even Muslims have also started saying that Bhagwan is everywhere.
सभी धर्मावलंबी इस बात को मानने लगे कि परमात्मा सर्वव्यापी। परमात्मा बाप आकर के कहते हैं बच्चे मैं सर्वव्यापी नहीं, इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने तुम्हारी बुद्धि को भटकाए दिया।
पीपल ऑफ ऑल रिलीजियंस started believing these words that Paramatma is all pervasive. Supreme Father comes and tells us, children, I am not Sarvavyapi, that is, all pervasive. This concept of Sarvavyapi has made your buddhi, that is, intellect, go astray.
Koi mandir mein bhatka, koi masjid mein bhatka, koi gurudwara mein bhatka, koi teertho mein bhatka. बुद्धि भटक जाने से एकाग्र बुद्धि नहीं हो सकी। अभी मैं आकर बताए रहा हूं, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे एक और लोक है।
सम वॉन्डर्ड इन मंदिर दैट इज टेम्पल्स, सम इन मस्जिद दैट इज मॉस्क, एंड सम इन गुरुद्वार दैट इज सिख श्राइन्स। सम वॉन्डर्ड इन प्लेसेस ऑफ तीर्थ स्थान दैट इज पिलग्रिमेजेस। Due to intellect going astray, it could not become concentrated. Now I have come and I am telling you that there is an other world beyond this five elemental world.
Turiyalo, Brahmaloka jise kehte, Paramdham jise kehte, Angrez log usko kehte hai Supreme Abode.
A completely unique world, which is called Brahmaloka. Which is called Paramdham. The Englishmen call it Supreme Abode.
मुसलमान कहते हैं खुदा अर्श में रहने वाला है, फर्श में रहने वाला नहीं, पहले कहते थे, अभी तो वो भी प्रभाव में आ गए।
Muslims say that Khuda, that is God, is a resident of Arsh, that is heaven, and not of Farsh, which means the earth. They used to say this in the beginning. Now they have also come under this influence.
तो ऐसा ऊंचा करता, ऐसा ऊंचा काम करने वाला जो इस शक्ति पर जब आता है तो सारी शक्ति को पलट के जाता है।
Such an elevated creator, engaged in such an elevated action, when he comes down into this world, he transforms this whole world and then returns.
कलयुग को बदल करके सतयुग बना करके जाता है। कलयुग है पाप का युग, पाप के युग को बदल करके सतयुग में देवताओं की पुण्य आत्माओं की दुनिया बनाता है।
He transforms the कलयुग, that is iron age, into the golden age and then returns. Iron age is a sinful world. He transforms the sinful world into a deity world of Punyatma, that is pure souls of the golden age.
और शास्त्र में भी लिखा हुआ है सतयुग में देवताओं का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब सुखी थे.
It is written in scriptures too. In Satyug, it was the reign of deities. It was the kingdom of Lakshmi Narayan. Everyone was happy in the kingdom of Lakshmi and Narayan.
Narayan ko sola kala sampurna kaha jata hai. Sarvona sampanna sola kala sampurna sampurna hinsak maryada purushottam kaha jata hai. To aisi duniya banane ke liye main aata hu.
Narayan is said to be endowed with 16 degrees of celestial purity. He is said to be endowed with all godly virtues, 16 celestial degrees, completely non-violent. And Maryada Purushottam, that is highest among all in following the code of conduct. So, I come to establish such a world.
Gaate bhi hain, to paap ki duniya se dur kahin le jaye. तो इस पुराने पाप की दुनिया में इस पुराने पाप के शरीर को छोड़ देना, बुद्धियों से छोड़ने की बात है, खुदकशी करके छोड़ने की बात नहीं है, ऐसा अभ्यास करना है आत्म की स्थिति का.
पीपल ऑल्सो सिंग इम्प्लोरिंग टेक मी फार अवे फ्रॉम दिस सिंफुल वर्ल्ड. सो वन हैज टू लीव दिस ओल्ड सिंफुल बॉडी इन दिस ओल्ड सिंफुल वर्ल्ड. इट इज अ मैटर ऑफ लीविंग दिस वर्ल्ड थ्रू इंटेलेक्ट, not by committing suicide.
बाप को भूल जाने से फिर योग बन नहीं रहता, क्योंकि सिखाने वाला जो बाप है उसी को भूल जाएंगे तो फिर योग बल कैसे है? माया को चांस मिल जाता है.
If you forget the father, then there won't be योग बल, that is the power attained through the concentration of mind. Because if you forget the father who teaches you, then how can you acquire spiritual strength? Maya gets an upper hand.
जब से थप्पड़ लगाई देती है देवान का, आत्मा देवान में आ जाती है. देवान में आने से पांच विकार पैदा होते हैं.
She instantly gives a slap of body consciousness. The soul comes into body conscious state. Body conscious state gives birth to panch vikar, that is five vices.
अगर अपन को आत्मा समझे, दूसरे को भी आत्मा समझे, तो स्त्री पुरुष की दृष्टि गायब हो जाती है. स्त्री पुरुष की दृष्टि ही नहीं रहेगी तो काम विकार भी नहीं होगा, कामेश क्रोधेश भी नहीं होंगे. कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध में आती.
If we consider ourselves as well as others as souls, the sensual feelings of distinction between man and woman vanish. If such awareness of male and female is not present, then sex lust will also not exist. When there is no lust, there is no anger. If desire are not fulfilled, anger arises.
तो आत्म की स्थिति पांच विकारों से दूर रखने वाली. और मैं देह हूँ, ये देहभान की स्थिति, दूसरों को देह के रूप में देखने की स्थिति, ये पांच विकारों को पैदा करती है.
It implies that soul conscious state keeps the five vices at bay. On the other hand, this body conscious state, that I am a body, this state of looking at others as a body, creates the five vices.
सबसे बड़ा है काम का थप्पड़. पांच विकारों का जब नाम गिनाते हैं सबसे पहला कौन सा आता है? नाम गिनाते हैं तो कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार. तो सबसे जो मुखिया है पांच विकारों का वो है काम विकार.
The biggest slap is from काम, that is sex lust. When the five vices are mentioned, which vice comes first? When they are named, one says, lust, anger, greed, attachment, ego. So, lust is the leader of the five vices.
बाप कहते हैं बच्चे नंबर वन ये भूल है, इसे काम विकार कोई भ्रष्टाचार कहा जाता है, भ्रष्टाचार और शिष्टाचार। देवताएं होते हैं शिष्टाचारी और राक्षस होते हैं भ्रष्टाचारी।
फादर सेज, चिल्ड्रन दिस इज द नंबर वन ब्लंडर, दिस सेक्स लस्ट इज ओनली कॉल्ड भ्रष्टाचार, दैट इज डिग्रेडिंग कॉन्डक्ट। भ्रष्टाचार एंड श्रेष्ठाचार, दैट इज एलिवेटेड कॉन्डक्ट, दैट इज फॉलो द मोस्ट एलिवेटेड कॉन्डक्ट। राक्षस दैट इज डेमन्स फॉलो द मोस्ट डिग्रेडेड कॉन्डक्ट।
हाँ, सारी दुनिया राक्षसों की हो गई, भगवान ने ये राक्षसी दुनिया नहीं बनाई थी, भगवान ने तो आकर के श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाई थी। श्रेष्ठाचार सिखाया था, शेष इंद्रियों से आचरण करने को कहा जाता है शिष्टाचार।
द होल वर्ल्ड हैज बिकम ऑफ द डेमन्स टुडे, गॉड डिड नॉट क्रिएट दिस इविल वर्ल्ड, इन फैक्ट गॉड हैड कम एंड मेड द एलिवेटेड वर्ल्ड, ही हैड टॉट द वर्चुअस कॉन्डक्ट, द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द एलिवेटेड ऑर्गन्स इज कॉल्ड श्रेष्ठाचार।
और भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने को कहा जाता है भ्रष्टाचार। भ्रष्ट इंद्रियों का जो पाप प्यार है, जो भूमूत की पैदाइश है, उससे दुनिया का पतन होता है।
द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द डिग्रेडेड ऑर्गन्स इज कॉल्ड भ्रष्टाचार, द लव थ्रू द डिग्रेडेड ऑर्गन्स, द डर्टी ब्रीडिंग आर द कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ दिस वर्ल्ड।
उस दुनिया की शुरुआत ही तब से होती है जब से दुनिया में दूसरे दूसरे धर्मों का आगमन होता है। आज से 2500 साल पहले इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म चलाया।
सच ए वर्ल्ड बिगिंस ओनली व्हेन द अदर रिलीजियंस अपीयर इन दिस वर्ल्ड। अबाउट 2500 इयर्स अगो इब्राहिम केम, ही इनिशिएटेड इस्लाम।
बाद में 250 वर्ष के बाद महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म चलाया। द्वैतवाद में से द्वैतवाद फैलता चला गया। पहले एक ही धर्म था, आज सनातन देवी देवता धर्म।
देन 250 इयर्स लेटर महात्मा बुद्धा केम, ही स्टार्टेड बुद्धिज्म। ड्यूअलिज्म लेड टू द स्प्रेड ऑफ ड्यूअलिज्म। इन द बिगिनिंग देर वॉज ओनली वन फेथ और रिलीजियन, द आदि सनातन देवी देवता धर्म।
उस आदि सनातन देवी देवता धर्म की एक बाप ने आकर के स्थापना की थी, इसलिए एकवाद था, अद्वैत था, द्वैत था ही नहीं।
दैट आदि सनातन देवी देवता धर्म वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय वन फादर हिमसेल्फ कमिंग डाउन फ्रॉम हिज सुप्रीम अबोर्ड। Hence, there was non-dualism, there was Advait, there was no Dvait, that is, dualism, that is, no other religion existed.
Advait se hi devataon ki rachana hoti hai, aur Dvaitvad se anek dharmon ke aane se rakshasi dharmon ki sthapna ho jati
hai. Through Advait only, the deities are created. Whereas, through dualism, due to the appearance of many religions, the religions of devilish nature are established.
भगवान आकर के देवता बनाता है। गीता में जो ज्ञान है, अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया जो नर से नारायण बना, नारी द्रौपदी को ऐसा ज्ञान दिया जो नारी से नारायणी बनी।
भगवान that is God comes and makes deities. The knowledge that is there in Gita, Arjun was given such a knowledge that he became Narayan, that is deity, from Nar, that is man. The woman Draupadi was given such a knowledge that she became Narayani, that is deity, from a Nari, that is woman.
ये शिक्षा आकर के बाप ही देते, परंतु गलती से उस गीता में साकार देवता का नाम डाल दिया। किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया।
Father himself comes down and teaches us this knowledge. But by mistake, the name of a corporeal deity has been placed in Gita. Whose name was placed? Krishna's name was placed.
Gita में तो कई एक श्लोक हैं जो ये बताते हैं कि गीता का उपदेश देने वाला निराकार है, साकार नहीं है। वो निराकार शिव ही शक्ति पर आकर के गीता का ज्ञान देता है।
There are many shlokas in Gita which confirm that the Gita was sermonized by the incorporeal, not corporeal. That incorporeal Shiv himself comes to this world to impart Gita Gyan.
वो जन्म मरण के चक्कर से जरूर नहीं आ रहा है, लेकिन गीता में शब्द आया है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ।
He is no doubt beyond the cycle of birth and death. But in Gita, a word is mentioned praveshtum, which means I enter, I am capable of entering.
तो जब मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, जैसे भूत प्रेत भी प्रवेश कर सकते हैं, तो क्या मैं प्रवेश नहीं कर सकता?
So when I am capable of entering, if evil spirits and ghosts can also enter, then can I not enter?
वो शक्ति पर आकर के इस शक्ति के रंगमंच के जो हीरो हीरोइन पार्टधारी हैं राम और कृष्ण, उन आत्माओं में आकर प्रवेश करता है।
He comes on the stage of creation and enters Ram and Krishna, the two souls who play the parts of hero and heroine.
जब प्रवेश करता है,
When he enters,
तो उनका सतयुग का और त्रेता का नाम बदल जाता है।
Their names of सतयुग and त्रेता change.
वही आत्माएं जन्म लेते लेते 84 के चक्र में आती है, अंतिम जन्म में आकर के साधारण मनुष्य तन बनता है।
The same two souls, after taking many births, coming in the cycle of 84 births, become the ordinary human beings in the last birth.
उस साधारण मनुष्य तन में आकर के परमात्मा नाम उनका नामकरण करता है, ब्रह्मा और शंकर। ये दो आत्माएं।
Supreme soul enters into these two ordinary human bodies and names them Brahma and Shankar. These are the two souls.
Brahma, Brahma ne badi aur ma mane ma. Duniya ki bade se badi ma.
Brahma, Brahm means badi, that is big, and ma means mother. So, the biggest mother of this world.
बड़ा काम करेगा तो बड़ी माँ हो, और माताओं ने इतना प्यार नहीं दिया होगा जितना ब्रह्मा ने शक्ति को प्यार दिया होगा।
If one performs a big task, then one becomes a big mother also. No mother would have given so much love, as much love Brahma would have given to the world.
तो काम के आधार पर नाम पड़े शास्त्रों में, शास्त्रों के कोई भी नाम उठा के देख लो।
Hence, in the shastras, that is scriptures, the name depends on the work they have done. Take any name of the scriptures and verify.
जैसा काम वैसा। दुर्योधन, दुशासन, अर्जुन, युधिष्ठिर, सारे ही नाम तो असहित है ना। तो वो इस समय पाठ चल रहा है।
As the task done, so the name. Duryodhan, Dushasan, Arjun, Yudhishthir, all the names are meaningful. Present day, the role is in progress.
Paramatma baap aakar ke ek ek baat ke hinte hinte karke samjhay raha hai, bataya raha hai ki bacche ab ye paap ki duniya khalas hone wali, paap ki duniya khalas hogi to paap aur punya se pare ki duniya mein tumhe jana hai pehle.
Paramatma Bap comes and explains everything in detail. He says, Children, the sinful world is on the verge of destruction now. The sinful world would cease to exist. Then you have to at first go to the world beyond this world of vice and virtue.
वो है ब्रह्मलोक मेरा धाम, जहाँ ना पाप होता है ना पुण्य होता है, वहाँ तुम आत्माएं बिंदु बिंदु रूपी स्टेज में रहती हो। बिंदु बिंदु रूप स्टेज से जब इस सृष्टि पर वापस आती हो तब तुम्हें शरीर मिलता है।
That is ब्रह्मलोक, my abode. Neither virtue nor vice exist there. You souls reside there as point of light. On your return from the point of light stage to this world of creation, you get the corporeal body.
तो जो नई शक्ति चलती है उस नई शक्ति का मैं आकर के ज्ञान ले रहा हूँ। कैसे नई शक्ति शुरू होगी और कैसे इतनी बड़ी 500-700 करोड़ मनुष्यों की शक्ति तलाश होनी है वो आकर के मैं अभी बताता
हूँ। सो द न्यू वर्ल्ड दैट विल बी देयर आई एम गिविंग यू द नॉलेज ऑफ दैट न्यू वर्ल्ड हाउ द न्यू क्रिएशन विल स्टार्ट and how big creation of 5-7 billion people will be destroyed. This I come and tell now.
एक तरफ विनाश का ज्ञान देता हूँ और दूसरी तरफ स्थापना का ज्ञान देता हूँ। आज से 65-70 साल पहले एटॉमिक एनर्जी का नाम निशान नहीं था, सिर्फ शास्त्रों में गाते आते हैं, हर हर बम बम।
On one side, I give you the gyan of destruction, and on the other side, I also give you the gyan of establishment. About 65-70 years ago from now, the concept of atomic energy was not known. Only the mention of har har bum bum was made in the scriptures.
Bum bum शब्द को शंकर जी के साथ जोड़ते क्योंकि शंकर का काम है पुरानी शक्ति का विनाश करना। तो पुरानी शक्ति का विनाश करने वाला जब इस शक्ति पर आ जाता है तो नई शक्ति की स्थापना करने वाला भी जरूर आता होगा।
द साउंड्स बम बम आर एसोसिएटेड विद शंकर। इट इज बिकॉज शंकर्स ऑर्डेन्ड मिशन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। सो When the one to cause the destruction of the old world, that is Shankar, arrives on this creation, then definitely the one causing the establishment of the new creation would also come.
वो है परमपिता परमात्मा शिव। लेकिन गलती से लोगों ने समझ लिया शिव शंकर एक है। अरे शिव को शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है। पुराने जितने भी मंदिर हैं उनमें बाजू में देवताओं को जो दिखाया जाता है शिवलिंग के चारों ओर उनमें एक मुख्य स्थान पर शंकर जी को दिखाया जाता है।
He is परम पिता परमात्मा शिव but people mistakenly thought that शिव एंड शंकर आर वन एंड द सेम। शिव इज शोन इन द फॉर्म ऑफ ए शिवलिंग। इन ऑल द एंशियंट टेम्पल्स अदर डेटीज आर शोन ऑन ऑल फोर साइड्स ऑफ द शिवलिंग। अमंगस्ट देम शंकर इज शोन ऑक्यूपाइंग ए प्रोमिनेंट प्लेस।
वही सामने शिवलिंग रखा हुआ है मंदिर के बीच में और वही चारों तरफ शंकर की मूर्ति और दूसरे देवताओं की मूर्ति रखी हुई है। तो इससे क्या पहचाना नहीं जा सकता उन देवताओं के बीच में बड़ा देवता महान देव महादेवता कौन है? महादेव है शंकर।
देयर इटसेल्फ एट द फ्रंट शिवलिंग इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द टेम्पल And there itself, on all the four sides, the idol of Shankar and other deities is placed. Can't we recognize from this? Amongst those deities, who is the greatest one? Mahadev. Mahadev is Shankar.
बाकी सब नंबर बार हैं। तो देवता को और भगवान को मिला के ये कर दिया है उसका भी कारण है।
Others come after him in rank. So the deity and Bhagwan, that is God, are mixed up and treated as one and the same. There is a reason for doing this too.
Shiva ko Brahma ke saath mila ke ek kyon nahi kar diya? Vishnu ke saath mila ke ek kyon nahi kar diya? Shiva ko Shankar ke saath kyon milaya?
Why is Shiv not associated with Brahma and considered as one? Why is Shiv not linked with Vishnu and treated as one? Why is Shiv associated with Shankar?
कुछ तो कारण होगा। कारण यही है कि शंकर को जो याद की अवस्था में बैठाया दिखाया जाता है वो याद में इतना तल्लीन होता है शिव ज्योति बिंदु की याद में जिस शिव ज्योति बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग दिखाते हैं, कि इतनी एकाग्रता, इतना लवलीन और कोई देवात्मा नहीं हो सकती।
There must be some reason. The reason is that Shankar, who is shown in a posture of deep meditation, he becomes so engrossed in meditation, in remembering the Shiv Jyotirbindu, that is, the point of light Shiv, which is shown in the bigger form as Shivling. No other Daitic soul is capable of so much ekagrata, that is, mental concentration, and of being so much immersed in love.
इसलिए शिव और शंकर को एक कर दिया है, बाकी ऐसा नहीं है कि शिव की आत्मा और शंकर की आत्मा एक है।
Hence, Shankar and Shiv are mixed up. As for the rest, it is not so that the souls of Shankar and Shiv are one and the same.
शिव अलग है, शंकर अलग। शंकर को याद में बैठे हुए दिखाया गया, चित्रों में देखो, मूर्तियों में देखो।
Shiv is different, Shankar is different. Shankar is shown as seated in meditative posture. Look at the idols, look at the pictures.
तो उसे क्या साबित होता है? अगर शंकर भगवान है तो उसे भी किसी की याद करने की दरकार है, उसको भी ध्यान में बैठने की दरकार है क्या? नहीं।
What does it prove? If Shankar is भगवान, that is God, then is it necessary for him to remember anyone? Does he need to sit in meditation? No.
Oh, तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, ज्योतिबिंदु स्वरूप है, वो तो सदाशिव है, उसको कोई पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है। किसको? सुप्रीम सोल शिव को।
He, that is Shiv, is himself the epitome of meditation, Jyotirbindu Swarup. He is Sadashiv, ever benevolent. There is no need for him to make any effort. For whom? For Supreme Soul Shiv.
वो जिसमें प्रवेश करता है, उसका नाम संसार में शंकर विश्वनाथ प्रसिद्ध होता है। उसको विश्व की बादशाही मिलती है।
The name of the person in whom Shiv enters will be famous as Shankar Vishwanath. He only obtains the sovereignty of world.
किसी को विश्व की बादशाही मिलती नहीं बाहुबल से। एक शंकर को ही दिखाया गया है चित्रों में कि योग बल से विश्व की बादशाही प्राप्त की।
No one can acquire world sovereignty by physical strength. Only one Shankar has been shown in pictures to acquire it by yogbal, that is, spiritual strength.
तो वो शंकर ने भ्रष्टाचार को दूर किया होगा। भ्रष्ट इंद्रियों का जो आचरण आज दुनिया में फैला हुआ है, वो भ्रष्टाचार की संतति को खलास किया होगा।
So, Shankar must have eliminated भ्रष्टाचार, that is, the corrupted behavior through the vicious organs. The activities of the vicious organs that is prevalent in the world today, he must have destroyed such Bhrashtachari Santati, that is, vicious progeny.
इसलिए गायन है, शंकर ने क्या भस्म किया? कामदेव को भस्म किया। और किसी देवता के लिए इस बात का गायन नहीं है।
So goes the saying, Shankar has burned Kamdev, that is, Cupid, to ashes. No such mention is made in respect of other gods.
Kya? Ki Kamdev ko bhasm kiya ho. Kamdev jo mukhiya hai, wo ka vikar. Us mukhiya vikar ko hi bhasm kar diya jayega, to dusre vikar to apne aap baat khade honge.
What? That Cupid has been burned. If the chief instigator of all vices, that is, Kamvikar, that is lust, is burned, other vices will also run away.
तो असली जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को अंत करने वाला आज तक कोई दुनिया में हुआ ही नहीं।
So, the real form of भ्रष्टाचार that exists until today, nobody who is capable of eliminating that existed in this world.
बड़े से बड़े धर्म पिताएं आए इस धरती पर, इब्राहिम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, गुरु नानक आए, विवेकानंद आए, लेकिन भ्रष्टाचार और बढ़ता ही गया, तो उनके आने से फायदा क्या हुआ?
ग्रेट रिलीजियस प्रॉफिट्स हैव अपीयर्ड ऑन दिस क्रिएशन. इब्राहिम केम, बुद्धा केम, क्राइस्ट केम, गुरु नानक केम एंड विवेकानंदा केम. नेवर्थलेस द इमोरल विशेस कॉन्डक्ट कंटिन्यू टू इंक्रीज. इफ सो व्हाट इज द गुड दैट हैज कम आउट ऑफ देयर अराइवल?
दुनिया नीचे गिरती गई तो आने से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? जरूर ज्ञान उनका कुछ अधूरा है. वास्तव में जो संपूर्ण शिव इस सृष्टि पर आता है तो ऐसा संपूर्ण ज्ञान देता है कि इस दुनिया से भ्रष्टाचार का नाम निशान अंत हो जाता है.
द वर्ल्ड हैज कंटिन्यूड टू स्लाइड डाउन. डिड इट लीड टू गेन और लॉस? श्योरली देयर नॉलेज इज इनकम्प्लीट इन सम एस्पेक्ट. इन रियालिटी ओनली वेन द कम्प्लीट शिव अपियर्स ऑन दिस वर्ल्ड He imparts such knowledge that even the traces of sinful conduct are expelled from this world.
जो भी शक्ति शक्ति पर रहती है, चाहे वो जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, सब श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले होते.
Whoever or whatever is left in the world, whether the animals, cattle or birds or human beings, All of them belong to the class of virtuous conduct.
जैसे मोर हमारे भारतवर्ष का आज भी राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है. क्यों माना जाता है? दूसरे पक्षी को क्यों नहीं? उदाहरण देते, राष्ट्रीय पक्षी को दूसरे पक्षी को मान लेते, क्योंकि सभी पक्षी मैथुन से शक्ति पैदा कर रहे हैं.
Just as the peacock is even today considered the national bird of India. Why is it considered so? Why is not any other bird taken as the example? Any other bird could have been chosen as national bird. Because all other birds procreate by sexual contact.
एक मोर ही ऐसा है जो मोरनी मोर के नाचते समय उसका आंसू पीती है और उससे गर्व रह जाता.
Only peacock is such an unusual bird that the peahen swallows the teardrops of the peacock dancing around her. Then the peahen becomes pregnant.
माने मिसाल के लिए आज भी दुनिया में एक ऐसी पक्षी की बात कायम है और वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, जिससे ये साबित होता है इस दुनिया में शिष्टाचारी संतान भी कभी हुई थी.
इट शोज दैट इवन टुडे द एग्जांपल ऑफ सच अ बर्ड प्रिवेल्स इन दिस क्रिएशन एंड दैट सेम बर्ड इज कंसिडर्ड एज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. दिस प्रूव्स दैट प्रोजेनी बॉर्न ऑफ अ वर्चुअस कॉन्डक्ट हैड प्रिवेल्ड इन दिस वर्ल्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम.
ये कोई असंभव बात नहीं है. श्रेष्ठ इंद्रियों से जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उनसे श्रेष्ठ दुनिया कैसे पैदा होगी, श्रेष्ठ शक्ति कैसे बनेगी? अभी बात ये बातें बताए रहे.
इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग एज टू हाउ वुड द प्रोजेनी बी प्रोड्यूस्ड थ्रू द एलिवेटेड ऑर्गन्स विच आर द ज्ञान इंद्रिया, दैट इज द ऑर्गन्स ऑफ सेंसरी परसेप्शन. How would the elevated creation be produced? Now, the father is telling us these things.
ये कॉन्सेंट्रेशन की बात है. आज मनुष्य की बुद्धि कौड़ी तुल्य हो गई है, क्योंकि कौड़ी में ही बुद्धि लगी रहती है.
This is a matter of concentration of mind. Present day intellect of human beings has become dirt cheap like a cowrie. Because the intellect is always focused on the cowrie. Here it implies the shape of female sex organs.
काम विकार प्रधान होने की वजह से और स्त्रियों में अपने देह का ज्यादा होना होने की वजह से कौड़ी की याद मुख्य हो गई. कौड़ी का शेप ही याद आता रहता है. तो जहां कॉन्सेंट्रेशन होगा वही सच्ची की वो वही बुद्धि की सारी पावर, शरीर की सारी पावर निचोड़ के इकट्ठी हो जाएगी।
Due to the sex lust being prominent amongst the other vices, and due to the woman having a lot of body consciousness, the remembrance of the cowrie has become principal. The shape of cowrie is constantly remembered. Where the concentration of the intellect rests, there itself all the power of intellect and body gets gathered.
So, kam indriyon mein सारी शक्ति इकट्ठी हो जाती है। ब्रस्त इंद्रियों में जब सारी शरीर की और बुद्धि की शक्ति इकट्ठी हो जाती है तो मनुष्य का पतन होगा या उत्थान होगा? पतन होगा।
सो इन द सेंसुअल ऑर्गन्स ऑल द पावर गेट्स कलेक्टेड। व्हेन द पावर ऑफ इंटेलेक्ट एंड बॉडी गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन द सिंफुल ऑर्गन्स, विल इट लीड टू द डाउनफॉल और एसेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग? It will lead to downfall of man.
वो प्यार भ्रष्टाचारी प्यार, भ्रष्टाचारी प्यार से जो संतति पैदा होती है वो भ्रष्ट आचरण करने वाली होती है। जो भी बच्चे आज पैदा हो रहे हैं वो मोस्टली दुखदायी पैदा हो रहे हैं।
That love is of sinful type. The progeny born out of such a sinful love will also indulge in evil deeds. The children who are born today are mostly those who create sorrow.
माँ बाप को ही दुख देने लग पड़ते, नहीं तो रचना हर रचयिता के सुख के लिए पैदा की जाती, उल्टा हो जाता।
They tend to make their parents unhappy. Otherwise, creation is created for the happiness of the creator. It has become the reverse.
अभी बाप आए हैं उल्टों को सुल्टा बनाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को शिष्टाचारी बनाने के लिए।
Now, father has come to straighten up that which has become the reverse, to convert those who are भ्रष्टाचारी, that is, sinful, into the श्रेष्ठाचारी, that is, virtuous.
भ्रष्टाचारी का टाइटल क्रोध से नहीं होता है। क्या कहा है? कोई क्रोधी हो तो क्रोधी को भ्रष्टाचारी का टाइटल दिया जाए, ये रंग बात। पतित बनने से ही ये टाइटल मिलता है और पतित होते हैं काम विकास।
Anger does not give the title of being sinful. What was said? When someone is merely angry, you can't give them the title of brahmachari, that is sinful. It is a wrong thing to do so. Only on becoming corrupted, this title is received, and one becomes corrupted by sex lust.
Yeah? किसी को क्रोध आता है? तो वो क्रोध कौन सी विशेष इंद्रियां हैं जिनसे झलकता है क्रोध? है आंख, आंख शिष्टाचारी है या भ्रष्टाचारी है? है आंख तो ज्ञान इंद्रिय है ना, तो ज्ञान इंद्रियों में सारी ताकत जाके इकट्ठी होती है।
व्हाट व्हेन वन बिकम्स एंग्री देन थ्रू विच स्पेशल ऑर्गन इज इट एक्सप्रेस्ड? द आईज। Are the eyes vicious or virtuous? The eyes are gyanendriya, that is, sense organs, isn't it? So, the entire power is gathered in these sense organs.
तो शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो रहा है या नीचे जाती है शक्ति? क्रोध के प्रति ऊर्ध्वगमन तो होता है, लेकिन वो ऊर्ध्वगमन जो है वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होता है, दूसरों को परास्त करने के लिए होता है, इसलिए उसमें पावर नहीं रहती।
सो इज द पावर रेजिंग और इज इट रेनिंग डाउन एट द टाइम ऑफ एंगर? द पावर इज रेजिंग बट दिस रेज इन पावर इज यूज्ड टू लुक डाउन ऑन अदर्स टू प्रूव अदर्स एज इन्फेरियर, to defeat the others. Therefore, There is no power in it.
अभी बाप आए हैं, बच्चे ये काम और क्रोध तुम्हारे महाशत्रु हैं, इनकी असलियत को जानो। क्रोध भी उतना ही नीचे गिराने वाला है जितना काम विकार नीचे गिराता है।
Now, the father has come. Children, sex lust and anger are your great enemies. Know their reality. Even anger degrades you as much as sex lust does.
काम विकार मनुष्य जब भोगता है तो स्त्री पुरुष ऐसे समझते हैं बड़ा प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को, प्यार नहीं कर रहे हैं और ही एक दूसरे को मार मार रहे हैं, गड्ढे में गिरा रहे हैं। वो बात किसी की बुद्धि में नहीं आती।
When human beings enjoy lust, man and woman think that they are loving each other deeply. They are not loving each other, but they are hurting each other even more. They are throwing themselves into a ditch. These thoughts do not strike anyone's intellect.
बाप ही आकर के ये बात सिखाते हैं कि बच्चे अब तुम शिष्टाचारी हो। तो बताया क्रोध से पतित नहीं बनते हैं, काम विकार से ही पतित बनते हैं।
Father alone comes and teaches this. Children, become virtuous now. That is why it was said that anger does not make one corrupt. In fact, lust corrupts.
इसलिए रणिया मारते रहते हैं हे पतित पावनाओ। क्या हे पतितों को पावन बनाने वाले बाप, इस सृष्टि पर आओ तो पावन जरूर बनना पड़ेगा। किसको बुलाते हैं पतित पावन आओ कह करके? किसको बुलाते हैं? कृष्ण को बुलाते हैं, कृष्ण बच्चे को बुलाते हैं, नहीं?
Hence they go on singing, O Redeemer of the sins, come. What? O Patit Pavan Father, come down to this world. So one must certainly have to become pure. Whom do they call? Whom do they call saying, come Patit Pavan? Do they call Krishna? Do they call child Krishna? No.
किसको बुलाते? पतित पावन का टाइटल किसके साथ जुड़ा हुआ है? शिव के साथ जुड़ा हुआ है, विष्णु के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं? किसके साथ जुड़ा हुआ है पतित पावन? सीता।
Whom do they call? With whom is the title of पतित पावन associated? Is it with Shiv? Is it with Vishnu? No. With whom is it associated? Patit Pavan, Sita Ram.
तो पतित पावन जो सीता राम का टाइटल है, उनको जो बुलाते हैं वही पतित से पावन बनते हैं। जो पतित पावन कहकर के बुलाते नहीं वो पतित से पावन बनते भी।
So those who call out for the one with the title Patit Pavan Sita Ram, they alone become Patit Pavan, that is, become pure from being impure. Those who do not call out Patit Pavan, they do not become pure from being impure.
रणिया मारते रहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पावन बनना पड़े क्योंकि जन्म जन्मांतर तुमने ही बुलाया है।
One keeps singing repeatedly, come, O Patit Pavan. So, it is absolutely necessary to become pure. Because during many births, you only had invited.
Patit Pavan Bap ko, Ram Bap ko bulaya hai, to tumko Pavan banna pade aur Bap ko aakar banana.
You had called the Redeemer Bap, the Ram Bap to come. So, you have to become pure and Bap has to come down and make you pure.
बार बार बोलते हैं पतित पावन आओ, पतित पावन आओ, पतित पावन माने रड़िया मारते।
Someone asked the meaning of रड़िया मारना। It means that one keeps on inviting him over and over again. Patit Pavan Bhag Kam.
मुख्य बात यह है पवित्रता की. इस ज्ञान में मुख्य धारणा कौन सी सिखाई जाती है? जितनी भी धारणाएं सिखाई जाती है उनमें मुख्य धारणा कौन सी है? पवित्रता की.
The important point is purity. What is the dharana that is chief practice that is taught in this gyan? Out of all the dharanas that are taught, which is the main one? It is of pavitrata, that is purity.
First purity aa jaye to peace or prosperity jeevan mein aap hi follow karegi. बाप आकर को कोई नई बातें नहीं सुनाते हैं क्या? हैं वही सारी शास्त्रों की बातें.
Once purity is inculcated, peace and prosperity will follow by themselves in the life. Father does not come and teach you anything new. What? It is in fact the same thing that is there in the scriptures.
तुलसी दास ने पहले ही बोल दिया है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निजाना. जहाँ सुंदर मति होती है वहाँ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अपने आप आती है.
तुलसीदास हैज सेड अर्लियर इटसेल्फ दैट वेयर देयर इज सुमति दैट इज गुड विल देयर इज वेल्थ. कुमति दैट इज बैड विल ब्रिंग्स डिजास्टर. Wherever Sundar, that is beautiful thoughts prevail, there peace and prosperity themselves follow.
Sundar mati hoti hai, to pavitrata hoti hai. Aankhon mein bhi pavitrata hoti hai, karmendriyon mein bhi pavitrata hoti hai. Purity nahi hogi, to peace or prosperity follow hi nahi karegi.
Beautiful thoughts lead to purity. The eyes also reveal purity. Purity is also evident in sense organs. If purity is not present, then peace and prosperity will not follow at all.
अभी ब्राह्मणों के जीवन में भी देख लो क्या कोई कहे कि हम 40 साल से 50 साल से ब्राह्मण है. 50 साल से ब्राह्मण है और पीस और प्रॉस्पेरिटी जीवन में दिखाई नहीं पड़ती तो क्या कहेंगे?
Now look at even the lives of Brahmins. What? If someone says that they have been Brahmins for 40 to 50 years, they have been Brahmins for 50 years, yet peace and prosperity is not evident in their lives, then what do you say?
सुख और शांति, prosperity दिखाई नहीं पड़ती है तो क्या कहेंगे? Pure हैं या impure हैं? ज्ञान को धारण किया है अथवा नहीं धारण किया है? जरूर धारण नहीं की.
इफ हैप्पीनेस एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आर नॉट एविडेंट देन व्हाट डू यू से? आर दे प्योर और इम्प्योर? हैव दे इम्बाइब्ड द नॉलेज और नॉट? श्योरली दे हैव नॉट इम्बाइब्ड ज्ञान.
प्योरिटी होती है बाप के साथ योग लगाने क्या और दूसरों के साथ योग लगाने से प्योरिटी नहीं आएगी. एक बाप के साथ बुद्ध योग लगाएंगे तो प्योरिटी जरूर आएगी.
प्योरिटी रिजल्ट्स फ्रॉम रिमेम्बरिंग द फादर. व्हाट? प्योरिटी डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम रिमेम्बरिंग मेनी अदर्स. प्योरिटी विल श्योरली रिजल्ट फ्रॉम रिमेम्बरिंग वन एंड ओनली वन बाप थ्रू द इंटेलेक्ट.
तुम काम को जीत लेंगे तो और सारे ही विकार तुम्हारी शरण में आ जाएंगे. क्या? एक काम को जीता तो काम को एक को तो एक ही पहले जीतेगा जिसका शास्त्रों में गायन है. किसका गायन है?
इफ यू कॉन्कर लस्ट अलोन then all the other vices will surrender to you. What? If you conquer lust alone, one alone will conquer that one first. About whom there is reference in the scriptures? About whom?
शंकर का गायन है ना, कामदेव को बसंती है, फिर उसके नंबरवार बच्चे भी होंगे। जो नंबरवार बच्चे हैं, वो माला के रूप में दिखाई जाते हैं।
Is it not Shankar? Whose phrase is there? That he had burnt Kamdev, that is, Cupid, the god of love or lust. Then his children will also take their ranks. Those children are shown in the form of a garland as per their numbers.
Mala gale mein bhi dikhai jati hai. Mala bhujaon mein bhi dikhai jati hai. Mala sar ke upar bhi dikhai jati hai.
Garland is shown around the neck also. Garland is also shown around the shoulders. Garland is also shown on the top of the head.
जो ज्यादा प्यारा बच्चा होता है तो बाप उसको प्यार से कहाँ चढ़ा के रखता है? सिर पर चढ़ा के रखे, इतने सिर पर चढ़ा के रखा हुआ है तो ज्यादा प्यारा होगा ना।
The one who is a beloved child, where does father provide a seat for him? He seats him on the head. Is it not said so? Has seated the child on the head. So they must be the most beloved, is it not?
तो कितने बच्चे ऐसे प्यारे निकलते हैं जो पहले काम विकार को जीतते हैं और पांचों ही विकारों को जीतते हैं, आठ निकलते।
How many such beloved children emerge who conquer their lust first and all the five vices too? Eight such children emerge.
तो ये समझने की बातें हैं, ये कोई दंत कथाएं नहीं है क्या कि शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया? कोई देवता को भस्म नहीं कर दिया, अपने अंदर की ही जो कमजोरी थी उस कमजोरी को भस्म कर दिया।
These are the points to understand. These are not Dantakatha, that is, legends. What? That Shankar has destroyed Kamdev. He did not burn a deity. He destroyed the weakness that was within him.
वो तो भक्ति मार्ग में बहुत सुनी है किताबें, पढ़ी है दंतकथाओं वाली। अभी ये ज्ञान की बातें तुम सिर्फ एक जन्म में सुनती हो।
In the path of devotion, we have heard and read many books of legends. Now these words of knowledge you hear in only one birth.
क्या? वो कथाएं तो पढ़ते आए शास्त्रों में, सुनते आए और सुनाते आए, बुद्धि में कुछ भी बैठा नहीं। अभी बाप आकर के उनका अर्थ समझाते, अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठता है।
What? We have been reading those stories in the scriptures. We have been listening to them and also narrating them. Nothing has entered into the intellect. Now, Bab comes and explains to us their meaning. Now it enters your intellect.
इसलिए इस जन्म को सफल करने के लिए बाप आते हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है, लेकिन अर्थ को नहीं समझते।
Therefore, to make this present life of yours fruitful, father comes. It has also been written in scriptures, taking birth as a human being is rather rare, but one does not understand the meaning.
अरे मनुष्यों में तो मनुष्य बनकर के जन्म लिए 63 जन्म से, द्वापर युग से ही मनुष्य जन्म होता चला है, उससे पहले तो देवताओं के जन्म होते थे।
In fact, human beings have taken 63 births as human beings. Birth as human beings started from Dwapar Yug, that is, Copper Age itself. Before that, deities took birth.
तो मनुष्य जन्म दुर्लभ हुआ, ये सिर्फ कहने की बात कह दी, अर्थ तो नहीं समझे, मनुष्य का अर्थ भी तो होगा।
Therefore, the saying that birth as human beings is a rare event is just said for the sake of saying. It was not at all understood. There must be meaning to the word manushya.
मनु की औलाद मनुष्य, जैसे विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, शिव के फॉलोअर शैव, एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में।
The children of Manu are Manushya, that is, human beings. Just as the followers of Vishnu are Vaishnav, followers of Shiv are Shaiv.
Brahma ke follower Brahman. To aise hi arth lagta hai. Manu kaha jata hai jo man ka part bajata hai.
Followers of Brahma are called Brahmin. Similarly, it takes on the meaning. Manu is the one who plays the role of the mind.
Paramatma Shiva Supreme Soul aate hai, to unki teen shaktiyan saath saath aati hai. Kaun si teen shaktiyan hai har atma ki? Man, buddhi, sanskar.
When the Supreme Soul Shiva comes, his three powers also accompany him. Which are the three powers of every soul? Mind, intellect and the resolve.
तो सुप्रीम सोल की भी तीन शक्तियां हैं, मन रूपी ब्रह्मा, बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र शंकर और परिवर्तन शक्ति विष्णु।
सिमिलरली देर आर थ्री पावर्स ऑफ सुप्रीम सोल टू, द माइंड इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा, द इंटेलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ द थर्ड आई दैट इज शंकर, एंड द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विष्णु।
ये तीन शक्तियों के साथ परमात्मा से भी शक्ति पर आता है।
सुप्रीम सोल शिव कम्स डाउन टू दिस वर्ल्ड अलोंग विद दीज थ्री पावर्स।
पहले पहले इस संसार में किस शक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है?
इनिशियली थ्रू विच पावर डज ही मैनिफेस्ट इन दिस वर्ल्ड?
मन के द्वारा।
इन द फॉर्म ऑफ माइंड।
मनु।
मनु।
सारी शक्ति मनु की औलाद हो जाती है।
The entire world becomes the offspring of Manu.
तो क्या द्वापर युग से जितने भी जन्म मनुष्यों ने लिए हैं, उन जन्मों में कहेंगे कि मनु की औलाद है।
Then the many births that human beings took since द्वापर, can we say that in those births they were offsprings of Manu?
उसको मनु की औलाद नहीं कहेंगे, वहाँ मनु होता ही नहीं। मनु कब होता है? संग भी बोलना होता है।
No, we cannot say so, because Manu does not exist there. When does Manu exist? In the confluence age.
त्रेसठ जन्मों में से जो लास्ट जन्म होता है, उस लास्ट जन्म में परमात्मा बाप आकर के मनु के द्वारा शक्ति आरंभ करते मनुष्यों की। वो मनुष्य जन्म दुर्लभ है।
In the last birth, out of 63 births, Paramatma Bap comes and starts the creation of human beings through Manu. So, this kind of birth as human being is rare.
तो शास्त्र में तो अगड़म बगड़म वो अर्थ लिख दिए, शब्दों के सही अर्थों को ही नहीं पकड़ा है। बाप आकर के एक एक बात के हिज्जे हिज्जे करके बताते हैं।
The jumbled up meanings have been written in scriptures. Nobody has grasped the real meaning of the words. Bap comes and explains each and every word.
इस जन्म को सफल बनाने के लिए मैं आया हुआ हूँ। दिन प्रतिदिन विनाश का समय नजदीक आता जाता है।
That I have come to make this birth of yours fruitful. The time of destruction is approaching nearer as days pass.
क्या?
What?
इतना नजदीक आता जाता है? बहुत नजदीक। पहले बोलते थे 76 में विनाश होगा, है? कितना नजदीक बताई दिया, 76 में तो हुआ ही नहीं।
How near does it come? Is it very near? At first it was told destruction will occur in year 76. How near was it said? It did not happen in 76 though.
है? हुआ? नहीं हुआ? है? अरे कोई चीज की शुरुआत होती है तो वो शुरुआत सबकी नजरों में नहीं आती।
Did it happen? Someone said no. Did it not happen? When something begins to happen, not everyone will be aware of it.
दुनिया की हर चीज की शुरुआत सूक्ष्म में होती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे 76 में विनाश शुरू नहीं हुआ।
Everything in this world begins in the सूक्ष्म, that is subtle. so. It cannot be said that destruction did not begin in the year 1976.
बाहर की दुनिया की तो बाबा ने बात ही नहीं की थी। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में कल्याणकारी विनाश जरूरी है कि बाहर की दुनिया में जरूरी है?
Someone said external world. Baba had not spoken about external world at all. First of all, is it necessary for auspicious destruction to occur in the world of Brahmins or in the external world?
Vinash kalyanakari hai ya akalyanakari hai? Kalyanakari hai.
Is destruction auspicious or inauspicious? It is indeed auspicious.
To vinash jo kalyanakari hai uski shuruaat ब्राह्मणों की दुनिया से संक्षेप में बाबा ने घोषणा कर दी।
Hence, Baba announced the beginning of the auspicious destruction within the Brahmin world from the year 1976.
तो क्या बाबा ने झूठ बोल दिया? झूठ तो नहीं बोला? समझने वालों की कमी है, समझ की कमी हो सकती है।
Does it mean that Baba has told a lie? No, he did not lie. It could be due to their lack of understanding.
बाबा ने तो स्पष्ट बोल दिया, संचेतन से पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। अब जो करे सो पावे।
बाबा हैज टोल्ड वेरी क्लियरली द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड फ्रॉम द ईयर 76। दोस हु डू विल अचीव एज वन सोस सो शैल वन रीप।
क्या करे, आप हुए तो मर गई दुनिया। इस बाहर की दुनिया से अपने को जिसने मार दिया उसके लिए दुनिया मर गई।
What should one do when one dies, the whole world dies for him. One who dies from this external world, for him that world is as good as dead.
इस दुनिया से, पुरानी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। जो कुछ भी लेना देना है, जो बाप आकर के नया संगठन बनाए रहे हैं, उसे नए संगठन से ही प्राप्ति होनी है। वो नए संगठन रूपी दुनिया ही नई दुनिया लाएगा।
There is nothing to give and take from this old world. Whatever one gives and takes, one will achieve from that new gathering itself. The new gathering that Baba comes and forms. That new Sangathan will only bring the new world.
तो संक्षेत्र से कोई आत्मा तो होगी जिसके लिए विनाश शुरू हुआ। कौन सी आत्मा है?
Therefore, there might be some souls for whom the destruction started from 76. Which were those souls?
लक्ष्मी नारायण, इनके लिए बोला है मुरली में। क्या बोला? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए।
They are लक्ष्मी नारायण, for whom it was said in मुरली। What was said? When did this Lakshmi Narayan take birth? 10 years less from today, 5000 years ago.
तो सन 65-66 की इस मुरली में से जब हम अर्थ निकालेंगे तो 65-66 से 5000 वर्ष के पुराने जो कल्प की तरफ हम उल्टे चले।
When we derive the meaning of this from the Murli of the year 65-66, then we will go backwards by 5000 years from 65-66.
तो कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ जाकर के हो जाएगा? 70 में 5000 वर्ष पूरा हो जाएगा। 70 में होगा कि 65 में होगा? 65 में होगा। 65 में जलाई गई वाणी आज से 5000 वर्ष पूर्व।
Then, where will we reach or where will it be completed? The 5000 years will be completed in the year 76. Will it be in 76 or in 65? It will be in 65. The Murli was sermonized in 65, 5000 years ago.
तो 5000 वर्ष पूर्व कहाँ हुआ? 65 में हुआ ना? फिर उसमें बोल दिया 10 वर्ष कम।
So, when was the 5000 years completed? In the year 65. then in that it was told less by 10 years.
आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, तो 10 वर्ष कम 5000 वर्ष उस वाणी के अनुसार कब हुए? 76 में हुए, जब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ।
10 years less from today, 5000 years ago. According to the Vani, when is that? It was in 76, when these Lakshmi Narayan were born.
तो इस स्थूल बुद्धियों ने समझ लिया कोई स्थूल जन्म हुआ होगा। अरे बाप सब कुछ वेद की बातें करते हैं, जैसे बच्चा पेट में से बाहर आता है तो गुप्त से प्रत्यक्ष हुआ ना, उस प्रत्यक्ष होने को ही तो जन्म कहा जाता है।
Those with a limited intellect thought that the physical birth might have taken place. Well, father in fact speaks everything in unlimited sense. When the child delivers out of womb, then it gets revealed from being hidden. The revelation itself is known as birth.
तो ऐसे ही ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में लक्ष्मी नारायण की आत्माएं जब से प्रत्यक्ष हुई, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया, तो उनका जैसे जन्म हुआ।
Similarly, since the time the souls of Lakshmi Narayan were revealed in the confluence-aged world of the Brahmins, that is, they took the revelation form of birth, then it was as if they were born.
तो कोई तो ब्राह्मण होंगे 76 में, जिन्होंने इस बात की गहराई को समझा होगा कि कौन सी आत्मा है आने वाली नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण बनने वाली है, होंगी या नहीं होंगी? जरूर समझने वाली ऐसी होंगी, और उसके प्रूफ भी मिलने चाहिए।
So, there might be some Brahmins in the year 76 who would have understood the depth of this matter as to who are the souls who will become Lakshmi Narayan in the coming new world. Would there be or not? Of course, there will be some who understood, and its proof also must be found.
दिल्ली में कल्पांत नामक अखबार छपता था उस समय, श्रीनगर से, उसमें 10-11 नगाड़े छापी गई, इन सब बातों का डिटेल दिया गया। उन नगाड़ों की अभी संकलित करके एक पुस्तक बन गई संजीवनी, संजीव ने सारी बातें दी हुई।
इन दिल्ली ए न्यूज़पेपर बाय नेम कल्पांत यूज्ड टू बी पब्लिश्ड फ्रॉम श्रीनगर एट दैट टाइम। 10 to 11 articles were printed in it. All these details were given. The collection of those articles has formed the book named Sanjeevani. Sanjeevani contains all these details.
तो 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म बेहद के रूप से हो गया। ये बेहद का ज्ञान है, दिव्य जन्म होता है यहाँ, यहाँ हद के जन्म की बात नहीं है।
Hence, the birth of Lakshmi Narayan occurred in the unlimited sense in 76. This is unlimited knowledge. Divine births occur here. There is no question of physical births here.
जैसे लक्ष्मी नारायण को अपने स्वरूप का पता लग जाता है कि हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, हमारी आत्मा का पार्ट नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का है, ऐसे ही हर आत्मा को, ईश्वरीय ज्ञान लेने वाले हर ब्राह्मण बच्चे को अपने पार्ट का पता चलना चाहिए।
जस्ट एज लक्ष्मी नारायण रियलाइज दैट दे वुड टेक द फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी नारायण, द रोल ऑफ देयर सोल्स इज टू प्ले द पार्ट ऑफ लक्ष्मी नारायण इन द न्यू वर्ल्ड, इन अ सिमिलर वे एवरी सोल, एवरी ब्राह्मण चाइल्ड रिसीविंग द गॉडली नॉलेज शुड नो द रोल्स इट वुड प्ले।
हु एम आई, नई दुनिया में पार्ट बजाने वाला मैं कौन सी देवात्मा हूँ? नंबर वारी प्रत्यक्ष होंगी, तो जरूर जो देव पद पाने वाले अष्टदेव होंगे वो पहले प्रत्यक्ष होंगे।
Who am I? Which deity role am I to play in the new world? They will appear rank-wise. Then definitely, those who achieve the status of Ashtadev that is, the eight deities, will reveal themselves at first.
त्रिमूर्ति तो प्रत्यक्ष होती ही है पहले, लेकिन वो सूर्यवंशी देवताएं पहले प्रत्यक्ष होते हैं। तो बताया, अभी दिन प्रतिदिन विनाश का समय नजदीक आता जाता है।
The Trimurtis will of course reveal at first, but it is the Suryavamshi Devta, that is, deities of the Sun dynasty, that will appear first. So it was said, now the time of destruction is coming nearer day by day.
यहाँ कौन से विनाश की बात की? आरंभिक विनाश की बात की या अंत के विनाश की बात की है? अंत के विनाश की बात की है। जो फाइनल विनाश होगा वो दिन प्रतिदिन नजदीक आता जा रहा है।
Here, which destruction is referred to? Does it refer to the destruction of the beginning or the one at the very end? The destruction of the end was referred to. The final destruction is coming nearer and nearer with each passing day.
हालांकि ये वाणी तो ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे उसी समय की बात है, क्या 65 से 68 तक की कोई वाणी होगी जहाँ से ये रिवाइज कोर्स की मुरली उठाई गई है? तो उससे साबित होता है कि बाबा ने तो बता दिया दिन प्रतिदिन विनाश का समय नजदीक आता जाता है, और बाबा ने वो घोषणा भी कर दी कि सन 76 से पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी।
दीवानी That is discourse is in fact a matter when Brahma Baba was alive. It might be a revised course murli taken from the Vani 65 to 68. This proves that Baba has told that destruction is coming nearer with each passing day, and Baba even proclaimed the same, that the year 1976 will see the old world destroyed and the new world established.
जब विनाश का समय नजदीक आता है फिर पढ़ाई खलास हो जाएगी। सन 76 से क्या पढ़ाई खलास हो गई? अरे बेसिक की जो पढ़ाई उस समय पढ़ रहे थे ब्रह्मा बाबा और ब्राह्मण बच्चे, वो पढ़ाई पूरी हो गई।
The study comes to an end as the time of destruction approaches closer. Has study come to an end since the year 1976? The basic knowledge that Brahma Baba and the Brahmin children were studying came to a completion.
जिनको क्लास ट्रांसफर करना था, क्लास को ट्रांसफर करना शुरू हो गया। अभी भी क्लास ट्रांसफर हो रहे हैं। बेसिक की पढ़ाई उनकी खलास हो गई। और अब आगे की एडवांस की पढ़ाई उनको पूरी करनी।
Whoever had to be transferred into a higher class, that work of class transfer commenced. Even now the classes are being transferred. The basic education ended. Now they have to complete the advanced knowledge further.
जैसे जनक पिछाड़ी में आया, क्या? जब पढ़ाई बेसिक की खलास होना शुरू हुई उस समय जनक आया या लास्ट में आया?
लाइक जनक हु अराइव्ड एट द एंड, डिड जनक कम व्हेन द बेसिक एजुकेशन वाज कंप्लीटिंग और डिड ही कम इन द एंड?
जनक कब आया? पिछाड़ी में आया ना। जब जनक पिछाड़ी में आया तो पिछाड़ी में आकर के उसने जरूर संपूर्ण सरेंडर कर दिया हो।
When did Janak come? He came in the end, is it not? When Janak came in the end, then he would have surrendered completely.
बस संपूर्ण सरेंडर किया, लेकिन लास्ट में उतनी प्रैक्टिस न होने के कारण योग में रहने का समय नहीं मिलता।
Though he surrendered completely, but due to not having sufficient practice, he did not get time to remain in yoga, that is, remembrance.
इतना जितना ऊंच पद पाना चाहिए उतना ऊंच पद नहीं पाया। जनक किसका नाम है शास्त्रों में? सीता जी के पिताजी का नाम जनक है।
Consequently, he could not acquire as high a position as he should have. Whose name is Janak in the scriptures? Janak is the name of Sita's father.
Sita कौन है? अरे राम होगा तो सीता भी कोई होगी ना? सीता और गीता।
Who is Sita? If Ram exists, then someone called Sita also would be there, is it not? Sita and Gita.
तो बोला सच्ची दिल पर साहब राजी होता है, माना जो एक बार बाप को पहचान ले फिर बीच में छोड़े नहीं, लगातार लगा रहे, तो वो है सच्ची दिल।
Hence the saying, the master, here the father, agrees to a true heart. It means that once someone recognizes the father, he or she must not leave him in the middle. They continue to carry on the relationship. That is called a true heart.
और इधर उधर दिल भटक गई तो हुई झूठी दिल, तो सच्चे दिल पर साहब राजी होता है।
If it explores and seeks another here and there, it is a false heart. Truly, the father agrees to a true heart.
और सब शास्त्रों में दंत कथाएं हैं, ढेर की ढेर कथाएं सुनते रहते हैं। ये तो बीज को और झाड़ को जानता है, कितने समय से समझाते आते हैं, कितने समय से योग में रहते हैं, फिर भी कर्म भोग तो होता ही।
And all the scriptures contain legends. One keeps on listening to a lots and lots of stories. He knows the seed as well as the tree. We are being taught since so long, we remain in yoga for so long. Yet, we have to pass through the karma bhog, that is, to suffer the after effects of doing an act.
Kya इतने लंबे समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी कर्म भोग क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि 63 जन्म का जो किए हुए विकर्म है, पाप कर्म है, वो अभी पूरे नहीं हुए। कर्मातीत अवस्था इसलिए अंत में आ गई।
We are doing purushart, that is efforts, since so long. Why is karma bhog still catching us? Because the misdeeds and sinful acts of the last 63 births are not yet neutralized. Therefore, the karmatit stage, that is, a stage beyond deeds, where the actions do not have any good or bad effects, will come in the end.
अंत कब होगा? जब स्थूल विनाश शुरू होगा, तो समझो अंत है। और विनाश कब होगा? जब पूरी स्थापना हो जाएगी।
And when will the end come? When the physical destruction takes over, then consider it is the end. And when does destruction begin? When the work of establishment is completed.
कर्मातीत अवस्था अंत में आवेगी, अभी तुम कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। क्या कर रहे हो? कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ऐसा पुरुषार्थ कर्म इंद्रियों से कर्म करते रहो, लेकिन कर्म करते हुए भी बुद्धि उपराम बनी रहे।
कर्मातीत स्टेज विल कम इन द एंड। नाउ यू आर मेकिंग एफर्ट्स टू बिकम कर्मातीत। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग एफर्ट्स टू बिकम कर्मातीत। व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स? That is, you continue to act with the aid of karmendriyas, that is, organs of action. Meanwhile, let your intellect remain detached from it.
Karmendriyon se atit bani rahe. Karmendriyon ke lep chhep mein buddhi na phase. Aisa tum karmendriyon ko control karne ka purushart kar rahe ho.
let it remain beyond the karmendriyas. Do not let your intellect get entangled in the effects of actions and reactions resulting from karmendriya. You are making effort likewise to control your karmendriyas.
अभी हम जाते हैं तो हमारे सभी दुख दूर हो जाने, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अलग हो जाती, क्या कहा? तो छोड़ दो शरीर, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर छोड़ लेना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया, नहीं छोड़ना चाहिए।
Now we go, then all our sorrows have to go away. Soul gets detached when it departs from the corporeal body. What was said? Then leave the body. If the soul detaches when one leaves the body, then one should leave the body, is it not? Even Brahma Baba left his body. Should one not leave the body?
शरीर छोड़ने की बात नहीं है, शरीर छोड़ना माना देह भान छोड़ना। ऐसी पक्की प्रैक्टिस हो जाए कि जैसे देह भान हमको पकड़े नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे ऊपर असर ही न करें।
यस, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ लीविंग द बॉडी। लीविंग द बॉडी इम्प्लाइज गिविंग अप द बॉडी कॉन्शियस स्टेट। द प्रैक्टिस शुड बी सो परफेक्ट सो एज टू एंश्योर दैट body consciousness does not catch us in its grip. Let not lust, anger, greed, attachment and ego show its effect on us.
वो तब होगा जब पिछले 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा और तब ही रिजल्ट निकलेगी। पहले से रिजल्ट नहीं निकल सकती।
It will happen when the karmic accounts of the 63 births are neutralized, and only then the results will come out. The results cannot come out earlier.
देरी से आने वालों को और ही जाती उमंग आकर, क्या कहा? जो जितना देरी से आते हैं ज्ञान में, उनको ज्यादा उमंग क्यों आता है? कारण क्या है?
Those who come late develop even more enthusiasm. What was it? The later one comes into this knowledge, why do they develop more enthusiasm? What is the reason?
हैं? उनको ज्यादा गर्मी क्यों चढ़ जाती है? अरे सूर्य सवेरे को निकलता है तो किरणें कैसी होती हैं? ठंडी ठंडी होती हैं। और दोपहर को सूरज की किरण तीखी हो जाती है तो गर्मी चढ़ेगी ना? तो यही बात है।
Why do they remain more energetic when sun rises in the early morning? How are the rays? They are cool, but in the afternoon the sun rays become warmer, so the warmth will increase, is it not? Implies one will become more energetic. It is the reason.
ज्ञान सूर्य जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है वैसे वैसे नई आत्माओं को रोशनी और ताकत ज्यादा मिलती जाती है। रिफाइन किया हुआ ज्ञान मिलता है, इसलिए उनका जोश बढ़ता चला जाता है। नारायणी नशा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है।
As the sun of knowledge ascends, so the new souls receive more light and power. They receive the refined knowledge, therefore their enthusiasm keeps on increasing. The Narayani Nasha, that is their enthusiasm, increases day by day.
तो देरी से आने वालों को और ही जाती उमंग आता है। लास्ट सो फास्ट हो सकते हैं और पुराने थक जाते हैं। क्यों? पुराने क्यों थक जाते हैं?
So those coming late develop even more enthusiasm. Those coming last can possibly go fast. And the old get tired. Why do the old get tired?
ठीक से ज्ञान नहीं उठाया हुआ है तो पुरानों में थकान आ जाती, ना देरी से आने वाले पुरुषार्थ में लग जाते हैं, जो नए नए आते हैं वो देरी से आए हैं फिर भी पुरुषार्थ में लग जाते हैं।
दे हैव नॉट एक्वायर्ड ज्ञान राइटली, दैट इज वाई दे बिकम टायर्ड। दोज न्यू सोल्स हु कम लेटर टेक टू पुरुषार्थ राइट अवे। दोज हु कम न्यूली दे कम लेट येट गेट इन टू डूइंग एफर्ट्स इमीडिएटली।
बात कहते हैं पीछे आने वाले भी आगे जा सकते, कंपल्सन नहीं बताया क्या कि जितने पीछे आएंगे सब आगे चले जाएंगे, नहीं।
द फादर सेज दैट दोज हु कम बिहाइंड मे ऑल्सो गो अहेड। इट इज नॉट सेड दैट इट हैपन्स सो कंपल्सरली। वॉट दैट ऑल दोज हु कम लेटर ऑन विल गो अहेड, नो।
एडवांस में जो भी पीछे आते हैं उनमें ये संभावना ज्यादा होती है कि चाहे तो वो आगे जा सकते हैं। सारा मदारी ऊपर है।
In the advanced knowledge, whoever comes later on, there is a greater possibility in them that if they wish, they can go ahead. It all depends on yoga.
क्या कहा? ये नहीं कहा कि भाग दौड़ पर मत आ रहे, मेले मलाखड़े लगाने पर मत आ रहे, या भाषणबाजी करने पर मत आ रहे। क्या बताया? सारा बुद्धियोग की एकाग्रता के ऊपर मदार है।
What was said? It was not said that it depends on physical running about or on the public speaking skills. What was said? It all depends on the degree of intellectual concentration.
याद घड़ी घड़ी भूल जाती, इसलिए माया थप्पड़ लगा देती। अगर याद की स्थिति एकाग्र बनी रहे तो माया बीच में इंटरफियर नहीं कर सकती।
वन फॉरगेट्स वेरी ऑफन एंड हेंस माया गिव्स देम अ स्लैप। इफ देयर रिमेम्बरेंस इज इंटेंस देन माया कैन नॉट इंटरफियर इन बिटवीन।
पुरुषार्थ करके प्यारे बाप को याद करते रहो।
हेंस पुट इन एफर्ट्स एंड रिमेम्बर द मोस्ट बेलोवेड फादर।
तुम जानते हो पढ़ाई से ही हम उच्च पद पावेंगे। क्या योग में लग जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम योग में लग गए तो हमने बाप को पूरा पूरा पहचान लिया।
यू नो दैट यू विल एक्वायर ए हाई पोस्ट बाय स्टडी अलोन। व्हाट? टू गेट इन टू योग डज नॉट मीन दैट यू हैव रिकॉग्नाइज द फादर कम्प्लीटली।
क्या मैं जो हूँ और जैसा हूँ वैसा कोई कोटों में कोई कोई है जो मेरे को बुरला पहचानते हैं, और जितना पहचानते हैं उतना ही प्राप्ति करते हैं।
ओनली ए वेरी फ्यू आउट ऑफ फ्यू फ्रॉम ए क्रोर रेयरली नो मी एज हाउ आई एम एंड वन विल अटेन एज मच वन रिकॉग्नाइजेस।
पढ़ाई ऊंची पड़ेगा तो ऊंची पद पावेगा। लौकिक दुनिया में भी ऐसे होता है। तो बोला बच्चों को अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बुद्धि में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हम पीछे आए हैं।
इफ वन स्टडीज मोर वन विल अटेन ए हाई पोस्ट। द सेम थिंग हैपेंस इन द आउटसाइड वर्ल्ड टू। हेंस इट इज सेड दैट चिल्ड्रन शुड डू स्टडी एफर्ट्स। इट शुड नॉट कम इन टू द माइंड दैट यू हैव कम लेट।
तुम्हारी बुद्धि में बेहद का बाप हमको पढ़ाई रहा है, ये बैठा हुआ है और इनके द्वारा पढ़ाई रहा है। क्या कहा?
इट इज देयर इन योर इंटेलेक्ट दैट द अनलिमिटेड फादर इज टीचिंग यू एंड ही इज टीचिंग यू थ्रू दीज। व्हाट वाज सेड?
इस द्वारा पढ़ाई रहा है या इनके द्वारा पढ़ाई रहा है? इनके द्वारा माने कोई दो है कम से कम जिनके द्वारा पढ़ाता है, माँ के द्वारा पढ़ाता है और बाप के द्वारा पढ़ाता है।
इज ही टीचिंग थ्रू दिस वन और दीज? थ्रू दीज इट मीन्स दैट देर आर एटलीस्ट टू ऑफ देम थ्रू हुम ही इज टीचिंग। He is teaching us through the mother as well as the father.
ये दो आकर के इकट्ठे हुए, क्या कहा? जब दोनों आकर के इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होता है? विष्णु बन जाता है.
These both have come together. What was said? What happens when two of them get together? Then Vishnu emerges.
बाप और माता रावण उनको भी छुड़ाए देता है. अब दोनों मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो विष्णु का राज्य शुरू होता है.
Father and the mother. Ravan separates them. When both of them combine, then the rule of Vishnu begins. Om Shanti.